शांति। योग की गहन अनुभूति कैसे करें? ज्ञान के सागर बाबा हम बच्चों को उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रेष्ठ अलौकिक अनुभव करते रहना, क्योंकि जितना हम अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं तो आने वाले हलचल के समय में भी हम अपने स्थिति को अचल रखने में सफल होंगे। दूसरी बात, हलचल के समय भी अनेक आत्माओं की मनसा सेवा भी कर सकेंगे। और तीसरी बात, अनुभवी जो बच्चे होंगे उन्हों के द्वारा, उनके श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। इसलिए हमारे पास योग के सुंदर गहन अनुभव का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। तो बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इस योगाभ्यास के तीन पहलू हैं। पहला है आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना, दूसरा है परमात्म अभिमानी कैसे बनना, और तीसरा है परमात्मा के साथ यथार्थ कनेक्शन कैसे जोड़ना। तो सबसे पहली बात पर हम चर्चा करेंगे कि आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति कैसे करें। सबसे पहले हमें ये बात समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक जीवन में कोई भी अनुभव तब होगा जब अणु स्वयं को समझेंगे। मैं अति सूक्ष्म बिंदु हूं, अणु हूं, ऐसा जब हम समझते हैं तो स्वतः ही अलौकिक अनुभव की खान हमें मिलती जाती हैं। तो आत्मा की अनुभूति करने के लिए और परमात्मा की अनुभूति करने के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का दर्शन हम अपने दिव्य नेत्र से ही कर सकते हैं। तो आत्मा का दिव्य नेत्र कौन सा है ये समझना बहुत जरूरी है। आत्मा तो एक शक्तियों का पुंज है। मैं अगर आपको दो प्रश्न पूछूं, पहला प्रश्न मेरा है कि क्या आपने मधुबन में स्थित शांति स्तंभ देखा है? तो तुरंत शांति स्तंभ आपके सामने इमर्ज होगा। और मेरा दूसरा प्रश्न है, शांति स्तंभ के ऊपर क्या क्या लिखा है, कौन सी ब्रह्मा बाबा की स्थिति की यादगार के रूप में कौन सी बातें लिखी हैं, तो आप स्तंभ को देखते हुए एक एक बात मुझे बताने जाएंगे कि शांति स्तंभ है, पवित्रता का स्तंभ है, ज्ञान का स्तंभ है। तो बाबा की सुंदर शिक्षाएं उस पर लिखी हैं। तो देखने वाली शक्ति है बुद्धि और सोचने वाली शक्ति है मन। एकांत में बैठकर हमें ये महसूस करना है, आत्मा समझने के बाद जो देखने वाली शक्ति है वो बुद्धि है और उस पर जो सोचने वाली शक्ति है वो मन है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर अगर आप अच्छी तरह से महसूस करते हैं तो योगाभ्यास आपको अति सरल हो जाएगा। प्रायः देखा जाता है इसमें लोगों का कंफ्यूजन होता है, इसलिए योगाभ्यास कठिन लगता है। तो आत्म अनुभूति करने के लिए हमें एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच स्वयं को अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा देखना है। स्पष्ट रूप से चमकता हुआ सितारा देखते हुए ये अनुभव करना है कि मैं शांत स्वरूप दिव्य सितारा हूं। शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं, परम शांति की अनुभूति हो रही है। तो ऐसे हमें आत्मा के जो निजी गुण सात हैं, उन सातों गुणों का एक के बाद एक ऐसा सुंदर अनुभव करते जाना है। उससे आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो निखरता जाएगा, वो प्रखर बनता जाएगा। तो देखने का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना जरूरी है और उस स्थिति में स्थित रहने का समय बढ़ते रहना जरूरी है। इससे आत्म अनुभूति की गहराई बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति अनुभव करना अर्थात 100% आत्मा का भान होना और 0 देह का भान होना, इसको कहते हैं संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना। हम सभी पांडवों के लिए शास्त्रों में गाया है, पांडव जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊंचाई पर चढ़ते गए, साथ में पूंछ हिलाने वाला कुत्ता था, वो कुत्ता भी गायब हो गया। और जैसे जैसे पांडव पहाड़ों पर चढ़ते गए, ऊंचाई पर चढ़ते गए, तो वो गलते गए। और जैसे जैसे वो गलते गए, बाद में वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो ये अभी का गायन है। पांडव अर्थात जो बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे हैं उन्हें पांडव कहेंगे। और पहाड़ों पर चढ़ना अर्थात ऊंची स्थिति पर जाना। जब ऊंची स्थिति पर हम जाते हैं, पहुंचते हैं, तो आत्मा की पूंछ जो देह की है उस पूंछ को भी हम भूल जाते हैं, पूंछ भी गायब हो जाती है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगते हैं, स्थिति ऊंची बनती जाती है, तो आत्मा में जो देह का भान है वो धीरे धीरे गलता जाता है और आत्मा बाबा की याद से संपूर्ण बनती है और परम धाम पहुंच जाती है। तो ये हमारा गायन अभी का है, इसलिए हमें एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास को पक्का करते रहना है। कर्मातीत स्थिति अर्थात कर्मेंद्रियों के भान से अतीत अर्थात दूर अर्थात न्यारा, जो हम सारे दिन भर में कर्म करते हैं उस कर्म के प्रभाव से न्यारा अनुभव करना, ये हमारा लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति की प्राप्ति करना। तो इसके लिए हमें एकांत में बैठकर आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत 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 पक्का करते जाना है। दूसरी बात, परमात्म अभिमानी कैसे बने। परमात्म अभिमानी बनने के लिए परमधाम रूपी पीस पैलेस में हमें बाबा के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से निहारना है, देखना है। क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। तो हमें बाबा को यथार्थ रीति से जानने की कोशिश करना है कि बाबा का स्वरूप कैसा है। बाबा के स्वरूप का वर्णन तीन शब्दों में किया जाता है, बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात वो परम ज्योति महाज्योति शिव बाबा सत्यता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिवम अर्थात सबके कल्याणकारी, सदा के कल्याणकारी और बेहद के कल्याणकारी, अर्थात वो कल्याण के सागर हैं। और सुंदरम अर्थात उनके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है, क्योंकि सुंदरता का कनेक्शन पवित्रता से होता है। परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, अर्थात सुंदरता के वो सागर हैं, सारी आत्माओं को वो सुंदर बनाते हैं। सभी आत्माओं पर जो ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्यूरिटीज हैं उन सबको मिटा देते हैं और आत्मा रूपी सजनियों को बहुत सुंदर वो बनाते हैं। ऐसे सुंदरता के वो सागर हैं। तो एकांत में बैठकर बाबा के स्वरूप को हम देखें तो बाबा का प्यारा कितना स्वरूप है, मन कैसा है, बहुत सतोपदान है, बहुत सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्प की सदा रचना करते रहते हैं, बुद्धि बहुत विशाल है, बहुत दिव्य है और बहुत भव्य है। और संस्कार बाबा के जो संस्कार है वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही रॉयल है। बाबा की पर्सनालिटी गजब की है और उनके शक्तियों को पहचाने, विशेषताओं को पहचाने और उनके प्रतिभा को पहचाने, तो ऐसे ऑलराउंड पर्सनालिटी को जानना ही कहेंगे परमात्मा को यथार्थ रीति से जानना। तो इसलिए जितना जितना हम बाबा को जानने की कोशिश करते हैं, न चाहते हुए बाबा से हमारा प्यार बढ़ते रहता है। क्योंकि बाबा से कनेक्शन जोड़ना, उसके लिए आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना बहते रहना। क्योंकि जिससे प्यार होता है उससे हमारी बुद्धि रूपी तार स्वतः ही जुड़ जाती हैं। जैसा प्यार होता है वैसे बुद्धि के तार हमारी जुड़ जाती हैं, और जितना प्यार होता है उतना देर तक बाबा से हमारी तार जुटी रहती हैं। इसलिए प्यार होने का आधार क्या होता है, प्राप्ति से प्यार होता है। इस संसार में जो प्राप्तियों से भरपूर कराने वाला बाबा है उनसे बढ़कर और कोई भी हमारा कल्याण चाहने वाला नहीं है। बाबा ने हमें संगम युग में अलौकिक खजानों से माला माल कर दिया है, शक्तियों के गुणों के ज्ञान के खजानों से भरपूर कर दिया है, और भविष्य की तो 21 जन्मों की राजाई का स्टैंप लगा दिया है। दुनिया की कोई भी ताकत उसको छीन नहीं सकती है। कहते हैं आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता, मेरे भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। तो भगवान ने जो लिखा हुआ है मेरे मस्तक पर, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है उसको मिटाएं। लेकिन ये बात हमें समझना जरूरी है, बाबा केवल प्यार का सौदागर है। योगाभ्यास करना अर्थात परमात्मा से कैसे प्यार करना, इस कला को सीखना। तो हमें एक बात महसूस करना है कि संगम युग में केवल मुझे बुद्धि के द्वारा परमात्मा के संग में ही रहना है, केवल परमात्मा से ही प्यार करना है। किसी भी व्यक्ति और वैभव के साथ प्यार की लेन देन नहीं करनी है। ये रियलाइज हमें जरूर करना है। उसके लिए 5 बातें बुद्धि में रखनी है, आत्मा के प्यार में और परमात्मा के प्यार में क्या अंतर है ये जानने के लिए। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में हमने द्वापर युग से बहुत कड़वे अनुभव किए और बहुत धोखे खाए। हमें माया के जो 5 खिलाड़ी हैं उन्होंने फुटबॉल बनाया और ऐसे लताड़ा, ऐसे बुरा हाल किया जो हम बिल्कुल थक चुके हैं। तो केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है। उनके प्यार में कोई कंडीशन और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आत्माओं के प्यार में तो कितनी कंडीशंस होती हैं। तीसरी बात, केवल परमात्मा का प्यार अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। आत्माओं का प्यार तो अल्पज्ञ है और हद का है और विनाशी हैं और स्वार्थ भरा हैं। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का तो शरीर भी इम्प्योर है और आत्मा भी इम्प्योर है, उनसे प्यार करने से तो हम और भी इम्प्योर बनते जाते हैं। और 5वीं बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर अर्थात ऊंचे परम धाम में पहुंचाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में लटकाता रहता है, मटकाता रहता है और भटकाता रहता है। इसलिए हमें परमात्मा से ही प्यार का सौदा करना है, आत्माओं के साथ नहीं करना है, ये बात पक्की ठान लेनी है। तो धीरे धीरे योगाभ्यास करते समय याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहें, क्योंकि जितनी जितनी प्रेम की मात्रा बढ़ती जाती है उतने बहुत सुंदर अनुभव योगाभ्यास में गहन अनुभव हमें होते जाते हैं। हमें एकदम परमात्मा जो प्यार के सागर हैं उस सागर में लीन हो जाना है, समा जाना है। सागर के लहरों में लहराने से अल्पकाल का आनंद जरूर मिलता है, लेकिन सागर की गहराई में जब हम जाते हैं तो हमें रतन मिलते हैं, अर्थात बहुत सुंदर गहन योग के अनुभव रूपी रतन मिलते हैं। इसलिए हमें प्यार के सागर के तले में जाना है, समा जाना है, लीन हो जाना है, शिवमय बन जाना है। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान देना है, हमारी जो लगन है वो बाबा के साथ बढ़ती रहे, क्योंकि संगम योग है, कमाई का योग है। कमाई जो शब्द है उसमें माई शब्द अंतर्निहित है, माई अर्थात माया, या तो कमाई होगी या माई होगी, माया अपने बुद्धि में होगी। इसलिए सदा कमाई करते रहें, अविनाशी खजानों से शक्तियों से भरपूर करते रहें, उसके लिए आवश्यकता है अटूट लगन की, बाबा से अटूट प्यार होने की। तो जैसे जैसे बाबा से हमारी लगन बढ़ती जाती है, अटूट प्यार बढ़ जाता है, तो बाबा ही हमारा संसार बन जाता है। क्योंकि संसार में केवल दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। जो प्राप्ति वे भी व्यक्ति और वैभव से होती है वो प्राप्ति हम बाबा से अर्थात परमात्मा से करने लगते हैं, और बाबा ही हमारा संसार बन जाता है और बाबा हमारे नैनों में समाये रहते हैं। योगी अर्थात प्रभु के पागल प्रेमी, प्रभु से बेहद प्यार करने वाले, क्योंकि योगी आत्माएं संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं कहलाते हैं। क्योंकि योगी आत्माएं कहाँ रहते हैं? परमात्मा के नैनों में नूर बनकर रहते हैं, परमात्मा के नैनों के पलकों में पलते हैं। ये इस संसार में सबसे ऊंचा भाग्य है, लेकिन केवल योगी आत्माओं को ही वो प्राप्त होता है। इसलिए एकांत में हमें बैठना है, और जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर देखता रहता है और सफेद प्रकाश का आनंद लेता है, झूमता रहता है, वैसे ज्ञान सूर्य बाबा को हम सूरजमुखी आत्मा बनकर बाबा को देखते रहें, देखते रहें और उनकी तपत में तपते ही रहें। योग लगाना अर्थात ज्ञान सूर्य स्नान करना, उनकी तपत में तपते रहना, क्योंकि बाबा का इशारा है साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है ज्वालामुखी योगाभ्यास करने का चल रहा है, तो ज्वालामुखी योगाभ्यास करने के लिए आवश्यकता है दृढ़ता की और एकाग्रता की। जब हम अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास के लिए बैठते हैं, दृढ़ता पूर्वक बैठना है। आज किसी भी हालत में मुझे ऐसा शक्तिशाली योग का अनुभव करना है, तो जैसी दृढ़ता होगी वैसे सफलता अवश्य होगी। उसके साथ साथ जो योगाभ्यास हम करते हैं, बाबा से जो कनेक्शन जोड़ते हैं, बुद्धि रूपी तार का कनेक्शन जोड़ते हैं, उसमें पूरी एकाग्रता जब होती है तो बाबा से असीम शक्तियां आत्मा में भरने लगती हैं और योग की ज्वाला धधकने लगती हैं, और उसमें हमारे जो कड़े संस्कार हैं, 63 जन्मों के कठोर संस्कार हैं, वो सेकंड में पिघल जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की, क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं योगाभ्यास के द्वारा आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो बाबा से हम एक तरफ शक्तियां लेते रहते हैं और दूसरी तरफ उन शक्तियों को यूज भी करते रहते हैं, इसलिए बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, कई वर्ष लगते हैं। इसलिए हमें शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना, ये लक्ष्य हमारा पक्का हो। और फिर योगाभ्यास में विशेष हमारा जो भान होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 100% जब कॉन्शियस होता है, भान होता है। मान लीजिए आप 4-5 साल के बाबा के बच्चे हैं तो 20 या 30% से परम धाम में आप बैठ सकते हैं, इसका मतलब 60-70% यहाँ है। तो हमें क्या करना है, गहन अनुभूतियों को बढ़ाने के लिए जितना हो सके परम धाम में जास्ती से जास्ती भान को ट्रांसफर करना है, 100% भान वहां होना, 0 यहां होना, ये है योग की सबसे गहन स्थिति। ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत बने थे, बाबा को कोई भी मिलने जाता था, बाबा के आंखों से लगता था बाबा केवल तन से यहां बैठे हैं, लेकिन मन से बाबा पूर्णतया अपने को परम धाम में शिव बाबा के पास ट्रांसफर कर चुके हैं, बाबा की आंखों से पता चलता था। तो ऐसे हमें योग की गहराई को बढ़ाते जाना है, क्योंकि जितना भान हमारा परम धाम में जाता है, ज्ञान सूर्य की शक्तियों का प्रभाव उस पर पड़ता है और उसके आधार से आत्मा में परिवर्तन आता है और आत्मा की बैटरी भी चार्ज होती है। इसलिए विशेष हमें ध्यान देना है, जब हम एकांत में बैठते हैं उस समय शक्तिशाली योगाभ्यास ही करना है। अभी हम चाहते हैं 10-15 मिनट बहुत ही गहन योग की अनुभूति करना। सभी करना चाहते हैं हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं। धन्यवाद। कोई भी बीच में नहीं उठेंगे। बिल्कुल पावरफुल, जैसे अमृत वेले बैठे हैं और बाबा की याद में डूबे हुए हैं। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं मकान मालिक ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटि के बीच आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मैं मकान मालिक आत्मा अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य सितारे से दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है। मज आत्मा रूपी चैतन्य सितारे के चहुओ सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मुरली में मेरे भाग्य के गीत गाते रहते हैं। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को अति सूक्ष्म निराकारी स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूं। इन पांच तत्वों से पार नीले आकाश से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। आहा, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जा चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने
दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस अया, ओहो फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्तियों के सागर बाबा मुझे अति शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा से अदा शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। शक्तियों का करंट मेरे सूक्ष्म शरीर में चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ फर ब्रह्मांड की दुनिया में मैं ज्योति बिंदु आत्मा पहुंच गई हूँ। जहाँ चारों सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। ओह मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राण नाथ सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे सलोने शिव साजने, मैं आत्मा उनकी सजनी हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन को देख रही हूँ। ईश्वरीय नशे से चूर दिव्य चक्षु से देख रही हूँ। मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना अनवरत बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ। अति समीप पहुँच गई हूँ। उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। प्यार के सागर में लीन हो चुकी हूँ, खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाबा प्यार के सागर हैं तो शक्तियों के सागर भी हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ ज्योति बिंदु आत्मा पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल हैं यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सान्निध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। उनके कंपनी का भरपूर आनंद ले रही हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा रोल। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में ब्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस शांति वन में चारों ओर फैल रहे हैं। इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही हैं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मज मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।